नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजधानी पटना समेत प्रदेश का अधिकांश इलाका घने कोहरे की चपेट में। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। दिल्ली की अदालत ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 4 मामलों को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। विकसित भारत जी भारत जी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंपों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। राजधानी पटना समेत प्रदेश का अधिकांश इलाका घने कोहरे की चपेट में है। कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। विभिन्न स्थानों पर जिला प्रशासन की ओर से अलाव का प्रबंध किया गया है। आज पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया और किशनगंज समेत कई जिलों में घना कुहासा छाया रहा। इधर घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। पटना हवाई अड्डे से कल 10 विमानों को रद्द कर दिया गया। वहीं कई विमान देरी से उड़े या पहुंचे। पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से पहुंची। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन जानकारी लेने की सलाह दी। पटना जिला प्रशासन ने ठंड और घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने बताया कि 8वीं तक के स्कूलों में पढ़ाई 10 बजे से शुरू होगी, वहीं 8वीं से ऊपर की कक्षाओं में 9 बजे से क्लास शुरू होंगे।
नगर निकाय और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया कि जहां पर भी असहारा लोग हैं उनको चिन्हित करके उन बस्तियों में और उन जगहों को चिन्हित करके वहां पर अलाव की व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त रेन बसेराओं को भी ठीक किया गया है। नगर निकायों के द्वारा रेन बसेरा संचालित है। स्कूल की टाइमिंग भी चेंज किया गया है। कल से 8वां तक का पढ़ाई 10 बजे से कराई गई है। सुबह 10 बजे के पहले 8वां तक का पढ़ाई नहीं होगी। शेष क्लासेस जो है वो 9 बजे से किया जा सकता है।
इधर मुंगेर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक के पठन पाठन को कल से 23 दिसंबर तक के लिए बंद करने की घोषणा की है। वहीं 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। सारण और मोतिहारी में भी 10वीं तक के सभी स्कूलों को 21 दिसंबर तक बंद करने की घोषणा की गई है। आज गया में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में घना कुहासा छाया रहेगा। वहीं 21 से 22 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश भागों में मध्यम से घना कुहासा छाए रहने की संभावना है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकांश स्थानों में घना से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण भागों के अधिकांश स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है।
इधर ठंड और प्रदूषण के असर से बच्चे और बुजुर्ग लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अस्पताल में पहुंचने वाले 30% से अधिक मरीज ठंड और प्रदूषण से पीड़ित हैं। श्री मंडल ने लोगों से भोजन में ऐसी चीजों को शामिल करने की सलाह दी है जो शरीर को गर्म रखे। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को कोहरे के कारण उड़ानों में होने वाली समस्याओं के लिए हवाई अड्डों और आधिकारिक प्लेटफॉर्मों से नवीनतम जानकारी लेते रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि वे मौसम विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है और वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमानों के आधार पर परिचालन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हैं। कुछ उड़ानें एयरलाइंस द्वारा रद्द की जा रही है और यात्रियों को हवाई अड्डों तक अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए पहले ही सूचित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि एयरलाइंस प्रभावित यात्रियों को धन वापसी और निःशुल्क पुनर्निर्धारण की सुविधा दे रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने IRCTC और लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले की सुनवाई को वर्तमान न्यायाधीश विशाल गोगले की बेंच से दूसरे जज की बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की थी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई ठोस और पर्याप्त आधार सामने नहीं रखा गया है और ऐसे में ट्रांसफर की मांग न्याय संगत नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट लैंड फॉर जॉब से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का 9 जनवरी 2026 को फैसला सुनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये कदम अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने पटना में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेट्रोल पंपों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएं ताकि आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी मददगार होगी। गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक सिद्धपीठ थावे मंदिर में चोरी के मामले में अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सारण के DIG नीलेश कुमार ने बताया कि इस मामले में गठित SIT की टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। DIG ने चोरों की तस्वीर जारी करते हुए सुराग देने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 19 दिन का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई। एक रिपोर्ट।
संसद का शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था आज संपन्न हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनाव सुधारों पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए। इसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण GRAMJI बिल शामिल है जिसने 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। इस विधेयक के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन की 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास, शांति विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी सुरक्षा, बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 और निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। साथ ही संसद ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच को मंजूरी दी जिसके तहत 1,32,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय शामिल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए इस सत्र को बहुत उपयोगी बताया।
कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। बहुत लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस को लेकर के सवाल उठाने का कोशिश किया, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जो दोनों सदन में बहस हुई उसके बाद पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया और चुनाव प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR और इलेक्शन कमीशन को जिन्होंने आरोप लगाया सबका पर्दाफाश भी हो गया।
संसद ने विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत VBG RAMJI विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसे इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी।
केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2047 में विकसित भारत की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा तैयार करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विकसित भारत जी राम जी बिल पर विपक्ष के विरोध पर कहा कि राहुल गांधी किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं। श्री सिंह ने संसद से बिल के पास होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि नई योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
राहुल गांधी जी किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, ये उनका स्वभाव का पार्ट है। राहुल गांधी जी ने कभी आकलन किया है कि मनरेगा कानून जो उन्होंने बनाया था वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था? भारत सरकार ने जो उस योजना को खत्म नहीं किया, एक नई योजना लेके आई और वह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। लेकिन आप ये सब चीज सकारात्मक सोच रखिएगा, तभी नहीं सब दिखाई पड़ेगा, नकारात्मक सोच में कहां से दिखाई पड़ेगा।
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की आवाज सुने बिना इस बिल को मंजूर कराया है।
आप आखिरी दो दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, इसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना, ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है।
पूर्वी चंपारण के केसरिया में निगरानी विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र की महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को 4,000 रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि मठिया पंचायत निवासी जनार्दन प्रसाद के आवेदन की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन 23 दिसंबर को पहली बार पटना पहुंचेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज इसकी जानकारी दी।
23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे और पूरे बिहार की और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और उनको बड़ी तैयारी के साथ वो रोड शो करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल में बिहार भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी।
उन्होंने बताया कि नितिन नवीन के आगमन पर रोड शो किया जाएगा जो पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर शेखपुरा हाउस, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर और उच्च न्यायालय होते हुए मिलर हाई स्कूल मैदान में समाप्त होगा। नालंदा जिले के राजगीर में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। कार्यक्रम के पहले दिन आज जाने माने गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। पूर्व राज्यसभा सदस्य और राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजनीति प्रसाद का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार भूषण सहित अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी पटना समेत प्रदेश का अधिकांश इलाका घने कोहरे की चपेट में। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। दिल्ली की अदालत ने राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 4 मामलों को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। विकसित भारत जी राम जी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंपों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।